Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
तुम्हारे मरने के बाद हमको पिंड पानी कौन देगा? क्योंकि तुम्हारा तो बेटा है ही नहीं, तुम्हारा बेटा तो है ही नहीं, तो हमको कौन पिंड पानी देगा भाई? हमें उस बात को सोचकर रोना आ गया है। ये दशरथ के सामने पितर इस तरह संवाद कर रहे हैं, इसका मतलब दशरथ भी धर्म विद्या के उपासक रहे हैं, ये सिद्ध हो गया कि नहीं? क्योंकि ये श्रुति तो यही कह रही है, जो धर्म विद्या की उपासना करते हैं वह पितरों को स्मरण करते ही पितर प्रत्यक्ष हो जाते हैं, समुत्तिष्ठन्ति। तब दशरथ को बड़ी चिंता सताई, तो जाकर वशिष्ठ जी ने कहा कि गुरुदेव, आज पितर मेरे सामने रोने लग गए। क्यों? उन्होंने कहा है कि तेरे बाद फिर हमको पिंड पानी कौन देगा, क्योंकि वंश उच्छेद हो जाएगा, तेरी कोई संतति नहीं है, तो आप कुछ उपाय करो कि ये वंश परंपरा, आप लोग अंग्रेजी में तो कहते हो ना फैमिली ट्री, हमको पता नहीं था ये फैमिली ट्री की, हम लोग तो वंश परंपरा कहते थे, तो एक ने अंग्रेजी शब्द प्रयोग कर दिया कि फैमिली ट्री। हमने कहा फैमिली ट्री क्या होता है? बोले ये वंश परंपरा है, दादा क्या थे, कैसे थे, बाप कैसे थे, बेटे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे कितने बेटे हैं, तुम्हारे कितने भाई हैं, भाई के कितने बेटे हैं, चाचा कितने थे, इत्यादि वंश फैमिली ट्री के अंतर्गत ये सारी चीज आते हैं। तो दशरथ ने कहा वशिष्ठ जी से, वशिष्ठ जी ने कहा कि बेटा एक ही उपाय है, वह पुत्रेष्टि यज्ञ। यदि पुत्रेष्टि यज्ञ होता है तब पुत्रेष्टि यज्ञ का फल तुम्हें जरूर पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन वो पुत्रेष्टि यज्ञ मैं अकेले नहीं कर सकता हूं, तुमको श्रृंगी ऋषि को लाना पड़ेगा। समीघ ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि इसमें माहिर हैं, तो उन्हीं को लेके आओ, मना के लेके आओ, वो आ जाते हैं और पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। और दशरथ गए, श्रृंगी ऋषि को मनाया, ले आए, और वशिष्ठ के आचार्यत्व में, श्रृंगी ऋषि की उपस्थिति में पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। अग्नि प्रसन्न हुए, पायस लेकर निकल गए, है ना? आगे की कहानी तो आप लोगों को पता है ना, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, संदर्भ इतना ही बताना था हमको इस प्रसंग में कि दशरथ भी धर्म विद्या के उपासक रहे, भीष्म पितामह भी धार विद्या के उपासक रहे। स यदि पितृलोक कामो भवती संकल्पात एव अस्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति इत्यादि न। इस सब प्रमाण से क्या सिद्ध हुआ? विश्वेश्वरीय लक्षण फलम दर्शयति, ये उपासना का फल, ध्यान का फल बताया गया है। तथा च प्रश्नोपनिषदि, इसी तरह सत्यकाम प्रश्नोपनिषद में, पिपलाद ऋषि और सत्यकाम आदि के प्रसंग में, प्रश्नोपनिषद का प्रसंग है। यह पुनः एतम त्रिमात्रेण ओम इति ते नैवाक्षरेण परपुरुषम अविध्याहित, ओमकार में जो तीन अक्षर हैं आ ओम, ये तीनों अक्षरों का संयुक्त रूप में परमात्मा के ध्यान करते हुए, तीन अक्षरों में परमात्मा की उपासना करते है, करता है तो कोई ध्यायित है ना, अविध्यायित स तेजसी सूर्य संपन्न, वो मरने के बाद अर्चे आदि मार्ग के द्वारा वह सूर्य के किरणों के माध्यम से, दीन शुक्ल पक्ष आदि के माध्यम से वह सूर्य संपन्न सूर्यलोक में पहुंचता है। और उससे क्या होगा? बोले वही विश्वेश्वरी भाव की प्राप्ति होगी, वो क्रम मुक्ति ऐश्वर्य भाव की प्राप्ति है। इत्यादि ना परम पुरुषम अभिध्याय ध्यायतो अर्चिरादिम अर्चिरादि मार्गोपदेश पूर्वकम। पिपला दृश्य ने अर्चिरादि मार्ग का उपदेश करते हुए स एतस्मात् जीव घनात् परात् परम पुरुषम पुरिषयम् पुरुषम इच्छते। वह इस जीव घन जीव समूह, जीव घन शब्द का अर्थ क्या हुआ? जीव समूह है ना, जीव घन। जीव घन कौन है? ये हाँ, यही तो स्वाध्याय का फायदा है। जीव घन शब्द से हिरण्यगर्भ, क्योंकि हिरण्यगर्भ क्या है? समष्टि जीव। तो समष्टि जीव मान को जीव घन, जहां जीव ही जीव समूह से बना है, जो जीव घन हिरण्यगर्भ समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी, तो जीव घन हो गया ना। जैसे यह तुम्हारा शरीर क्या है? स्थूल शरीर, ये भी एक प्रकार का जीव घन है, क्योंकि मेडिकल साइंस के हिसाब से ब्लड में तुम्हारा जो रक्त है वो क्या है? पूरा का पूरा जीव घन है। ब्लड जो है क्या है? जीव घन है। एक बूंद रक्त ब्लड में लाखों करोड़ों जीव है, इसका मतलब एक बूंद रक्त क्या हुआ? जीव घन। इसी प्रकार के जितने भी जीव हैं, उनके जितने भी सूक्ष्म शरीर हैं, सब मिलकर उसका एक शरीर होने के कारण हिरण्यगर्भ को क्या कहा? जीव घन। स ये तस्मात् जीव घना, जीव घन से पर। जीव घन से परे कौन है? हिरण्यगर्भ से परे कौन है? ईश्वर विश्वेश्वरियम, वो तो ईश्वर भाव की प्राप्ति, उपासक कहा जाएगा, है ना। देखो जीव घन, जीव की अवस्था जागृत अवस्था, वैश्वानर भी जीव घन है और हिरण्यगर्भ भी जीव घन है, लेकिन ईश्वर जीव घन नहीं है। ईश्वर जीव घन नहीं है, इसलिए ईश्वर में समस्ति जीवों का मिलकर एक ईश्वर बना ऐसा नहीं है। ईश्वर हमेशा व्यष्टि ही है, हां फिर भी ईश्वर में जीव जीव भाव से नहीं रहते। हिरण्यगर्भ तक जीव जीव भाव से रहेंगे, ईश्वर में जीव भी ऐश्वर्य भाव से ही रहेंगे, लेकिन वो संस्कार के रूप में वो सारे जीव वहां लीन होते हैं महाप्रलय में, वो अलग चीज है। तो ये तस्मात् जीव घनात् परात् परम पुरिषयम् पुरुषम इच्छते। पुरिषयम् है शरीर के अंदर ही रहने वाला पुरुष यानी ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। इति ब्रह्मलोकम् गतस्य तत्रैव सम्यक् दर्शन लाभम दर्शयित्वा। ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति वगैरह, फिर वहां सम्यक् दर्शन रूपी फल की प्राप्ति करके यानी ज्ञान को प्राप्त करके, तम ओंकारेणैव आयतनेन अन्वेति विद्वान तत्शांतम अजरम अमृतम अभयम परम च इति। तब जीव घन से परे जाकर ब्रह्मलोक में जाकर ईश्वर भाव को प्राप्त करके, फिर वहां ज्ञान प्राप्त करके वह शांतम अजरम अमरम अमृतम परम इति, तब जाकर ज्ञान से वह मुक्त होता है। उपदिष्टति इति, ऐसा जो है उपदेश किया है ना। इति सम्यक दर्शनेन मोक्ष उपदिष्टति, बाद में फिर सम्यक दर्शन द्वारा ही मोक्ष बता दिया गया है। तो दो भेद हो गया, प्रणव उपासना से जीव घनात् परम पुरुषम उपेति, ईश्वर भाव की प्राप्ति, फिर उसके बाद सम्यक ज्ञान द्वारा परम माने ब्रह्म मोक्ष की प्राप्ति। तमेवम विद्वान अमृतत् इव भवति, ये भी ज्ञान से मोक्ष बताया नृसिंह तापनी उपनिषद। इति विदुषो अर्चिरादि गमनम विदेहे वा अमृतत्व प्राप्तिम दर्शयति। अच्छा विने वा, इति विदुषो अर्चिरादि गमनम बिना यही वा अमृतत्व प्राप्तिम दर्शयति। ज्ञान से, ज्ञान का फल ये बताया कि अर्चिरादि मार्ग के बिना ही इहै वा इसी शरीर में इसी जन्म में इहै वा अमृतत्व प्राप्तिम दर्शयति। यथा कामयमानः इत्यारंभ्य, यहां से आरंभ करके बृहदारण्यकोपनिषद में यथा कामयमानः इत्यारभ्य न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मेव सन् ब्रह्माप्येति। पहले उपासना का फल बताया गया है यथा कामयमानः इत्यादि द्वारा, बाद में कहा है सम्यक ज्ञान का फल बता दिया कि न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति। उसके प्राण उत्क्रमण नहीं होते, वो ब्रह्म होता ही ब्रह्म हो जाता है, यह सम्यक ज्ञान का फल बता दिया। इत्यादि ना विनैव उत्क्रांति विदुषो मोक्ष उपदिष्टम, उत्क्रांति के बिना ही उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है ज्ञान के द्वारा, ऐसा उपदेश बृहदारण्यकोपनिषद में किया हुआ है। उसका उदाहरण दे रहे हैं याज्ञवल्क्य के प्रसंग को, उद अस्मात् प्राणाः क्रमन्त्याहो नेति। ऐसे ज्ञानी के प्राण उत्क्रमण करते हैं कि नहीं, ऐसा याज्ञवल्क्य से पूछा। उद अस्मात् प्राणाः उत्क्रमन्त्याहो नेति, नेति होवाच याज्ञवल्क्यः। याज्ञवल्क्य से पूछा कि ऐसे ज्ञानियों के प्राण उत्क्रमण करते हैं कि नहीं, तो याज्ञवल्क्य ने कहा न इति होवाच। याज्ञवल्क्य कहा कि किसी भी हालत में उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, और जो उत्क्रमण करता है वो क्रम से जाएगा, उत्क्रमण ही नहीं करेगा तो क्रम मुक्ति का तो प्रश्न ही नहीं है ना। न प्राणा उत्क्रामन्ते अत्रैव समवलीयन्ते, तो ज्ञानी इहैव मोक्ष को प्राप्त करता है। ये बात बृहदारण्यकोपनिषद यज्ञवल्क्य के प्रसंग में स्पष्ट हो चुका है। इति इस तरह प्रश्न पूर्वकम उत्क्रांत्याभावो दर्शिता, प्रश्न के द्वारा उत्क्रांति के बारे में किया गया प्रश्न का उत्तर याज्ञवल्क्य ने उत्क्रांति के अभाव का जवाब देकर उसके उत्तर प्रश्न का उत्तर दिया, यानी वह उत्क्रमण नहीं करता, जीवन सन जीवन रहते ही वह मुक्त हो जाता है। तथा च ब्राह्मे पुराणे, श्वेतासुर उपनिषद के भाष्य पढ़ाना बड़ा बोर हो जाता है, लंबा खींचते बाल के खाल खींचते हैं, खींचे जाएंगे। अब श्रुति ने कह दिया तो हो गया काम, फिर पुराणों ने कहा, उसने कहा, उसने कहा, ये लोकपाल बिल जैसे ही होने जा रहा है। चांदो के उपनिषद चांदो के उपनिषद ये लोकपाल बिल है, ये है सभी का राय लेना है ना, तो इसीलिए श्वेतरस उपनिषद ये लोकपाल बिल है, उपनिषद नहीं, उपनिषद के भाष्य, भाष्य लोकपाल बिल है। उपनिषद अपनी जगह ठीक है, भाष्य जो है वो लोकपाल बिल है। सभी का प्रमाण लाना, सभी के राय लेना है ना, सभी का राय लेना। तथा च ब्राह्मे पुराणे जीवन मुक्ति गत्यभावं च दर्शयति, जीवन मुक्तों के गति का अभाव दिखाया गया है। वह ब्रह्म पुराण का प्रमाण है, यस्मिन् काले स्वमात्मानं योगी जानति केवलं तस्मात् कालात् समारभ्यः जीवन मुक्तो भवेत् असौ। किसी ने पूछ लिया होगा कि व्यक्ति कब जीवन मुक्त होता है, व्यक्ति कब जीवन मुक्त होता है, किसी ने पूछा होगा, तो उसका उत्तर दे दिया, यस्मिन काले, जिस समय, यस्मिन काले स्वम आत्मानम है योगी मुमुक्षु, जिस समय अपने ही स्वरूप को, योगी माने साधक, मुमुक्षु जिज्ञासु, यहां योगी का अर्थ वो हठ योगी या क्रिया योगी नहीं ले लेना, ज्ञान योगी, सांख्य योगी, गीता के भाषा में सांख्य योगी, यस्मिन काले स्वम आत्मानम योगी जानाति केवलम, अपने आप को केवल के रूप में जानता है, केवल माने अद्वितीय, सजातीय विजातीय सुगत भेद त्रय रहित शुद्ध रूप में जानता है, तस्मात कालात समारंभ, उसी काल से वह जीवन मुक्त हो जाता है, जिस समय अपने स्वरूप को, केवल स्वरूप को जानता है, उसी समय से वह जीवन मुक्त हो जाता है। कब तक जीवन मुक्त होता है? क्या बात करते हो, जीवन जब तक रहेगा तब तक जीवन मुक्ति है। जीवन माने प्रारब्ध समाप्त होने के बाद, जीवन समाप्त, जीवन समाप्त होने के बाद तो जीवन मुक्ति नहीं रहा ना, फिर वो विदेह मुक्ति हाँ, जीवन मुक्ति तो जीवन रहने पर ही जीवन मुक्ति है ना, तो जीवन तस्मित कालात समारंभ, कब तक? जब तक प्रारब्ध से शरीर रहेगा तब तक, और जिस दिन प्रारब्ध शरीर खत्म हो गए जीवन विदेह मुक्त हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली विदेह मुक्त हो जाएगा। तो हमारे पास प्रीपेड मोबाइल है ना, प्रीपेड है, वोडाफोन का प्रीपेड कार्ड है मोबाइल, तो हमको नेपाल फोन करना पड़ता रहता है, तो जब हम फोन करते हैं, बात करते हैं, तो उसमें समय काउंट होता जाता है, और बात समाप्त करके स्विच ऑफ किया कि तुरंत स्क्रीन में पैसा का बैलेंस आ जाता है, भाई कोई समय नहीं लगता, ऑफ किया कि फट लाल अक्षरों में सामने आ जाता है, भाई हाँ आपका लास्ट कॉल, स्पष्ट लगता है लास्ट कॉल का इतना और बैलेंस इतना, तुरंत ही आ जाता है, तो फिर दिल धड़कने लगता है जब बात करते हैं। अब देखो बड़ा विचित्र है, यहां से नेपाल एक मिनट का 10 रुपया नेट है, एक मिनट का नेपाल के लिए, एक मिनट का 10 रुपया है, अमेरिका के लिए 1 रुपया और नेपाल के लिए गरीब देश के लिए 10 रुपया, पता नहीं अमीर देश के लिए 1 रुपया, गरीब देश के लिए 10 रुपया, फट एक मिनट पूरा होकर दूसरे मिनट का 1 सेकंड टच किया कि 10 रुपया गया, तो पल्स का नहीं है वहां, वो सेकंड के हिसाब से काउंट करते हैं, पल्स है नहीं वहां, मिनट के हिसाब से का, एक मिनट का 1 मिनट 2 सेकंड हुआ तो 20 रुपया गया, फट बैलेंस आता है। कई बार तो मैं फोन करता हूं किसी को, मैं सोचता हूं उसको मिस कॉल दूं, क्योंकि वहां से यहां करते हैं तो 3 रुपया लगता है, नेपाल से यहां करते हैं नेपाली 4.5 रुपया 4 रुपया है, यहां के करेंसी से 3 रुपया समथिंग आता है, अब यहां से वहां करते हैं तो 10 रुपया का है, तो नेपाली करेंसी में 16 रुपया हो जाता है, देख लो, वहां से फोन करते हैं तो वहां के करेंसी में 4 रुपया है, आखिरी इकोनॉमिक्स के दृष्टि से देखा जाए उधर से इधर करना सस्ता है, तो मैं मिस कॉल दे देता हूं, वो लोग कर लेते हैं। ऐसा कभी कभी मिस कॉल देता हूं, दो घंटे बचती है तो फट वो फोन उठा देता है, मैं किधर काटता हूं, 10 रुपया गया, मतलब ही फट गया, वो चार भाई आ जाता है ऑटोमेटिक। इसी तरह जीवन मुक्ति, जीवन खत्म होते ही वो इस तरह विदेह मुक्ति आ जाता है, जैसे आपने टेलीफोन को ऑफ किया कि आपका बिल ऑटोमेटिक आ जाता है। समझ गए कि नहीं? हाँ, वहां किसी को कहने की जरूरत नहीं, कोई वहां ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है कि उसको जीवन मुक्ति से विदेह मुक्त करने के लिए कोई कोड दबाना पड़े। नहीं है, कहीं कोई कोड की आवश्यकता नहीं, गुरु को बुलाना पड़े। गुरु ऐसा फिक्स कर देता ऑटोमेटिक कि जीवन मुक्ति की भूमिका में तुम पहुंच गाओ, विदेह मुक्ति तुम्हारा ऑटोमेटिक ही है। जीवन मुक्त हो गया, दुखेश अनुद्विग्न मना सुखेश विगत प्रिय भीतराग वयक क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते न दृष्टिया कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते। पूरा का पूरा गीता का द्वितीय अध्याय 18 श्लोक स्थिति प्रज्ञ के लक्षण से भरा हुआ है, जीवन मुक्तों के लक्षण से भरा है। तो उन लक्षणों को तुम अपने में खोजो, यदि है दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत प्रिय भीतराग वय क्रोध, तब स्टैंप लग गया कि तुम जीवन मुक्त हो। तो क्या हुआ भाई? तो ब्रह्म पुराणे यस्मिन काले समात्मानम योगी जानाति केवलम तस्मात कालात समारंभ जीवन मुक्तो भवेत असौ। इसका मतलब क्या हुआ? जीवन मुक्त स्वाभाविक है। क्या है बोलो? नया शब्द मिल गया तुम्हें, तुम्हें नया शब्द मिला है। जीवन मुक्त क्या है? स्वाभाविक है। शब्द से परिचित हो गए? सावधिक का अर्थ क्या हुआ? निश्चित अवधि के लिए है। वो अवधि क्या है? सीमा काया पर्यंत। काया का जहां अंत हो गया, इसलिए क्या होता है? सावधिक हो गया ये जीवन मुक्ति। लेकिन विधेय मुक्ति निरावधिक, फिर उसके निरावधिक, उसकी कोई सीमा नहीं। हाँ, कुछ शब्द ऐसे है तो लौकिक शब्द से भी समझाना पड़ता है वो वेदांत, इसीलिए तो जरा रुचिकर होता है ना स्वाध्याय, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके लौकिक दृष्टांत से समझाए ना, एग्जाम्पल दें ना, तो सावधिक समझ गए कि ना? वो जीवन मुक्ति सावधिक है। ये बात समझ गए? कब तक के लिए है? काया पर्यंत। मोक्षस्य नैव किंचित स्यात् अन्यत्र गमनम क्वचित्। हाँ, स्थानम परार्ध्यम अपरम यत्र गच्छन्ति योगिनः। मुक्त पुरुष का मुक्त होकर जाने का कोई स्थान ही नहीं है। समझ गए कि नहीं? मुक्त पुरुष का मुक्त होकर जाने का कोई स्थान ही नहीं है। मोक्ष से नहीं वह किंचित स्याद अन्यत्र गमनम क्वचित। क्यों अन्यत्र क्यों नहीं जाते वो? क्योंकि उनके सामने कहीं जाने के लिए स्थान ही नहीं बचता है। स्थानम परार्धम अपरम, न पर है न अपर है। यत्र गच्छन्ति योगी, न जहां वो योगी जावे। अज्ञान बंध भवे दस्तु मोक्षो ब्रह्मलय स्थिति। अज्ञान बंध भवेत अस्तु मोक्षो ब्रह्मलय स्थिति। अज्ञान बंधन है और मोक्ष ब्रह्मलय है। और आगे क्या कहेंगे कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।